আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام আলা খাতামিন নবিয়্যিন আম্মা বাদু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। 6 6 মুর্দোঁ কে ওয়াকিয়াত, ইয়ে মজমুন গীবত কি তবাহকারিয়াঁ, সফা 194 তা 210 সে লিয়া গয়া হে। দুআয়ে আতার, ইয়া আল্লাহ করিম, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ 6 6 مردوں کے واقعات پڑھ یا سن لے، اسے رزق حلال کھانے اور بال بچوں کو بھی حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ 6 6 مردوں کی سنسنی خیز حکایات، لوگوں کی عبرت کے لیے فوت شدہ مسلمانوں کی برائی بیان کرنے میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے۔ محدثین کرام رحمت اللہ علیہم نے مسلمانوں کو گناہوں سے ڈرانے کے لیے کتابوں میں مرے ہوئے کافروں کے علاوہ بد مذہبوں اور مسلمانوں کے عذابوں کے بھی تذکرے فرمائے ہیں، چنانچہ اس ضمن میں 6 6 مردوں کی سنسنی خیز حکایات ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، آگ کا کرتا۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بقیع میں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اف اف، تو میں نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ فرمایا، نہیں، بلکہ اس قبر والے شخص کو میں نے بنو فلاں کے پاس صدقہ وصول کرنے بھیجا تھا تو اس نے ایک چادر بطور خیانت بچا لی تھی، آخر ویسا ہی آگ کا کرتا اس کو پہنایا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، درس عبرت دینے کے لیے اس حدیث پاک میں فوت شدہ شخص کے عذاب قبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس روایت سے یہ بھی روز روشن کی طرح ظاہر ہوا کہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، جب ہی تو قبر میں ہونے والے عذاب کے ساتھ ساتھ سبب عذاب کی بھی ہاتھوں ہاتھ خبر ارشاد فرما دی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا کتنا پیارا عقیدہ تھا، چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کی حدائق بخش شریف کا شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی عنایت سے عرش آپ کی گزرگاہ ہے اور فرش زیر نگاہ ہے، الغرض ملائکہ ہوں یا عالم ارواح، کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، بے دین کی گردن میں سانپ۔ حافظ ابو خلال نے کتاب کرامات الاولیاء میں اپنی سند سے روایت کی کہ مجھ سے عبداللہ بن حاشم نے فرمایا، میں ایک میت کو نہلانے گیا، جب میں نے اس کے جسم سے کپڑا کھولا تو اس کی گردن پر سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان سانپوں سے کہا کہ آپ کو اس پر مسلط کیا گیا ہے اور ہمیں اس کو غسل دینا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو غسل دے دیں۔ फिर आप अपनी जगह वापस आ जाइए। तो वो सांप हटकर एक कोने में हो गए। जब हम गुस्ल मैयत से फारिग हुए तो वो अपनी जगह वापस आ गए। ये शख्स बेदीनी यानी गुमराही में मशहूर था। नंबर 3, गर्दन में सांप लिपटा हुआ था। हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मुझे एक मैयत को गुस्ल देने के लिए बुलाया गया। जब मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसकी गर्दन में सांप लिपटा हुआ था। लोगों ने बताया कि ये सहाबाए किराम अली रिदवान को गालियां देता था। माअदल्ला, सहाबा के हक में खुदा से डरो। ए आशिकान सहाबा व अहले बैत, माअदल्ला, सहाबाए किराम अली रिदवान को गालियां देना गुनाह, गुनाह बहुत सख्त गुनाह, कतई हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब सवानेहे करबला 192 सफ़ा 31 पर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुगफ़ल रदी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे असहाब के हक में खुदा से डरो, खुदा का खौफ करो, इन्हें मेरे बाद निशाना ना बनाओ। जिसने इन्हें महबूब यानी प्यारा रखा, मेरी महब्बत की वजह से महबूब रखा, और जिसने इनसे बुग्ज़ किया वो मुझसे बुग्ज़ रखता है, इसलिए उसने इनसे बुग्ज़ रखा। जिसने इन्हें ईज़ा दी उसने मुझे ईज़ा दी, जिसने मुझे ईज़ा दी उसने बेशक खुदाए पाक को ईज़ा दी, जिसने अल्लाह पाक को ईज़ा दी करीब है कि अल्लाह पाक उसे गिरफ्तार करे। साहबाए किराम अलीम रिदवान का निहायत अदब कीजिए। सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, मुसलमान को चाहिए कि साहबाए किराम अलीम रिदवान का निहायत अदब रखे और दिल में उनकी अकीदत व मोहब्बत को जगह दे। उनकी मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, और जो बदनसीब साहबा अली रिदवान की शान में बेअदबी के साथ ज़बान खोले वो दुश्मन खुदा व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमान ऐसे शख्स के पास ना बैठे। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी अहले सुन्नत का बेड़ा पार है क्योंकि साहबाए किराम अली रिदवान उनके लिए सितारों की मानिंद, और अहले बैते अतहार अली रिदवान किश्ती की तरह हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नंबर 4, कब्र में भयानक काला सांप। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा की खिदमत में कुछ लोग हाजिर हुए और अर्ज़ की, हम सफ़रे हज पर निकले हुए हैं, मकाम सिफाह पर हमारे काफ़िले का आदमी फौत हो गया है, हमने उसके लिए जब कब्र खोदी तो एक बहुत बड़ा काला सांप बैठा नज़र आया जिसने कब्र को भर रखा था। उसे छोड़कर दूसरी कब्र खोदी तो उसमें भी वही सांप नज़र आया। आप रदी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में इस गंभीर मसले के हल की खातिर हाजिर हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, ये उसकी खयानत की सज़ा है जिसका वो मुर्तकिब हुआ करता था, और बेहकी के अल्फाज ये हैं, ज़ाका अमलुहुल्लज़ी काना यामल, यानी ये उसके अमल की सज़ा है जो वो किया करता था। आप हजरात उसे इन दोनों में से किसी एक कब्र में दफन कर दीजिए। खुदा की कसम, अगर इस दुनिया की सारी ज़मीन भी खोद डालेंगे तब भी हर जगह यही कुछ पाएंगे। बिलाखिर हमने उसको सांप भरी कब्र में दफना दिया। वापस आकर हमने उसका सामान उसके घर वालों को दे दिया और इसकी बेवा से उसके आमाल के बारे में सवाल किया तो उसने बताया ये खाना बेचता था और उसमें से अपने घर वालों के लिए कुछ निकाल लेता था, फिर कमी पूरी करने के लिए उसमें उतनी ही मिलावट कर देता था। धोखाबाजी जहन्नम से है। ए आशिकान रसूल, देखा आपने, ज़रूरतन इबरत के लिए मुर्दे की बुराई बयान करना जायज़ था। जब ही तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा ने उस मरे हुए हाजी की बुराई बयान फरमाई। नीज़ जवाज ही के सबब बुलंद पाया मुहद्दिसीन ने इस हिकायत को अपनी अपनी कुतुब में नकल किया। इस हिकायत से मिलावट वाला माल धोखे से बेचने की तबाहकारी मालूम हुई। आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब बयानात अत्तारिया हिस्सा अव्वल 480 सफहात के सफहा 218 पर है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जो हमारे साथ धोखाबाजी करे वो हम में से नहीं, और मकर और धोखाबाजी जहन्नम में हैं। एक और मकाम पर सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन अशखास दाखिले जन्नत ना होंगे, नंबर 1 धोखाबाज, नंबर 2 बखील, नंबर 3 एहसान जताने वाला। मिलावट वाला माल बेचने का जायज तरीका, यहाँ वो लोग इबरत हासिल करें जो मिलावट वाला माल धोखे से बेचते हैं। अगर मरने के बाद पकड़ में आ गए तो क्या होगा? अगर माल मिलावट वाला है और गाहक को मिलावट वगैरह की मकदार बता दी या मिलावट बिल्कुल नुमाया नजर आ रही है तो ऐसा माल बेचना जायज है, जबकि इसमें से कुछ छुपाया ना गया हो। मसलन मिलावट की मकदार बताई मगर कम बताई, जैसा कि 50% मिलावट थी और 25% कहा, या जितनी मिलावट ऊपर से नजर आ रही हो इससे ज्यादा नीचे मिलावट कर रखी हो और वो जाहिर ना करे तो नाजायज है। इसी तरह धोखा देने के लिए ऊपर उम्दा फल और नीचे या बीच में गले सड़े फल रखने वालों और यूं ही दूसरी चीज़ों में धोखाबाजी से काम लेने वालों को इन गुनाहों से बचना चाहिए। धोखाबाजी में नहुसत है बड़ी, याद रख इसकी सजा होगी कड़ी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नंबर 5, परिंदे ने तय की तो उसमें से इंसान निकल पड़ा। इस्मा अब्बादानी कहते हैं, मैं किसी जंगल में घूम रहा था कि मैंने एक गिरजा देखा। गिरजा में एक राहिब की खानकाह थी। उसके अंदर मौजूद राहिब से मैंने कहा कि तुमने इस वीरान मकाम पर जो सबसे अजीब व गरीब चीज़ देखी हो वो मुझे बताओ। तो उसने बताया, मैंने एक रोज़ यहाँ शुतर मुर्ग जैसा एक देव हैकल सफ़ेद परिंदा देखा। उसने उस पत्थर पर बैठकर कह की, उसमें से एक इंसानी सर निकल पड़ा। वो बराबर कह करता रहा और इंसानी आज़ा निकलते रहे और बिजली की सी सुरअत यानी फुर्ती के साथ एक दूसरे से जुड़ते रहे, यहाँ तक कि वो मुकम्मल आदमी बन गया। उस आदमी ने जो ही उठने की कोशिश की, उस देव हैकल परिंदे ने उसके ठोंग मारी और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर निगल गया। कई रोज तक मैं ये खौफनाक मंजर देखता रहा। मेरा यकीन खुदाए पाक की कुदरत पर बढ़ गया कि वाकई अल्लाह पाक मार कर जिलाने यानी जिंदा करने पर कादिर है। एक दिन मैं उस देव हैकल परिंदे की तरफ मुतवज्जे हुआ और उससे दरियाफ्त किया कि ऐ परिंदे, मैं तुझे उस जात की कसम देकर कहता हूँ जिसने तुझको पैदा किया कि अब की बार जब वो इंसान मुकम्मल हो जाए तो उसको बाकी रहने देना ताकि मैं उससे उसका अमल मालूम कर सकूँ। तो उस परिंदे ने फसीह अरबी में कहा, मेरे रब के लिए ही बादशाहत और बका है और हर चीज़ फ़ानी है और वही बाकी है। मैं उसका एक फ़रिश्ता हूँ और इस शख्स पर मुसल्लत किया गया हूँ ताकि उसके गुनाह की सज़ा देता रहूँ। जब कै में वो इंसान निकला तो मैंने उससे पूछा, ऐ अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले इंसान, तू कौन है और तेरा किस्सा क्या है? उसने जवाब दिया, میں حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ جب میں مر چکا تو اللہ پاک کے سامنے میری روح حاضر ہوئی، اس نے میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ پاک نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور دیو ہیکل پرندے نے اس پر ٹھونگے ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا۔ ابن ملجم نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا؟ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے قاتل کا، جو کہ خارجی بد دین و گمراہ تھا، کیسا دردناک انجام ہوا، وہ بد نصیب کیوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا۔ اس سلسلے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن ملجم ایک قطام نامی خارجیہ عورت کے عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے شادی کے لیے مہر میں 3000 درہم اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا۔ افسوس، عشق مجازی میں ابن ملجم اندھا ہو گیا اور اس نے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا۔ اس نابکار کو وہ عورت تو خاک ملنی تھی، ہاتھوں ہاتھ یہ سزا ملی کہ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے پکڑ لیا، بالآخر اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوکرے میں ڈال کر آگ لگا دی گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا، اور مرنے کے بعد تا قیامت جاری رہنے والے اس کے لرزہ خیز عذاب کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا۔ وہ بدبخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ شہوت کی گھڑی بھر کے لیے پیروی طویل غم کا باعث بنتی ہے۔ صحابی کا قول یہیں تک ہے، قابیل بھی تو شہوت ہی کی وجہ سے حضرت سیدنا حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر کے برباد ہوا، اور برباد بھی کیسا ہوا کہ صرف سن کر ہی جھرجھری آ جائے۔ تو اس کی بھی حکایت ملاحظہ فرمائیے اور شہوت کی آفت سے رب العزت کی پناہ مانگیے۔ نمبر 6، حوض پر الٹا لٹکا ہوا آدمی۔ عبداللہ کہتے ہیں، ہم چند افراد سمندری سفر پر روانہ ہوئے، اتفاقاً چند روز تک اندھیرا چھایا رہا، جب روشنی ہوئی تو ایک بستی آ گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں پینے کے لیے پانی کی تلاش میں روانہ ہوا تو بستی کے دروازے بند تھے، میں نے بہت آوازیں دیں، کوئی جواب نہ آیا۔ اسی اثنا میں دو شاہ سوار یعنی دو گھوڑے سوار نمودار ہوئے، انہوں نے کہا، اے عبداللہ اس گلی میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں پانی کا ایک حوض ملے گا، اس میں سے پانی لے لینا اور وہاں کے منظر کو دیکھ کر خوفزدہ نہ ہونا۔ میں نے ان سے ان بند دروازوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں ہوائیں چل رہی تھیں، انہوں نے بتایا یہ وہ گھر ہیں جن میں مردوں کی روحیں رہتی ہیں۔ پھر میں حوض پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پانی پر الٹا لٹکا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے پانی لینا چاہتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ مجھے دیکھ کر پکارنے لگا، اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ میں نے برتن لے کر ڈبویا تاکہ اسے پانی پلا سکوں، لیکن کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے آدمی سے کہا، اے بندہ خدا، تو نے دیکھ لیا کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ تجھے پانی پلاؤں، لیکن میرا ہاتھ پکڑا گیا، تو مجھے اپنا واقعہ بتا۔ اس نے کہا، میں حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا قابیل ہوں جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا۔ قابیل کے سیاہ کارنامے۔ اے عاشقان رسول، قابیل شروع میں مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا، اسی نے دنیا کا سب سے پہلا قتل کیا۔ اسے دنیا میں یہ سزائیں ملیں کہ قتل کرتے ہی اس کا گورا رنگ سیاہی میں تبدیل ہو گیا، دل ایک دم سخت ہو گیا، अपनी बहन इकलीमा को अदन की तरफ लेकर भाग गया। हराम औलाद हुई। जब बुढ़ा हो गया तो इसकी औलाद इसको पत्थर मारती थी, यहाँ तक अपनी औलाद के पत्थर ही से हलाक हो गया। हलाकत के बाद मिलने वाली सज़ा का लर्जा खेज वाकया आप सुन चुके। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाही अलैह काबिल के सियाह कारनामे बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, हज़रत आदम अली सलाम का हुक्म ना मानना, नाजायज़ निकाह का इरादा करना, हाबील के कत्ल का इरादा करना, हाबील के कत्ल के बाद मुर्तद हो जाना, गाना बजाना, बाजे ताशे ईजाद करना। मज़ीद फरमाते हैं, मुर्तदो बेदीन को नबी ज़्यादा होना बिल्कुल ही बेकार है। पैगंबर ज़ादगी सिर्फ़ ईमान के साथ मुफीद है। देखो काबिल नबी ज़्यादा था मगर हलाक हो गया। तेरी रहमतों ही से ईमान मिला है, ना हो अब ये मुझसे जुदा या इलाही। मुसलमान है अत्तार तेरी अता से, हो ईमान पर खातिमा या इलाही। दर्स में शिरकत मेरी इस्लाह का सबब बन गई, ईमान की हिफाजत का जज्बा पाने, गीबत करने सुनने की खसलत मिटाने, नमाजों और सुन्नतों की आदत बनाने के लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए। सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफ़लों में आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफ़र कीजिए और कामयाब ज़िंदगी गुजारने और आखिरत संवारने के लिए नेक आमाल के मुताबिक अमल करके रोज़ाना जायज़ा के ज़रिए रिसाला पुर कीजिए और हर मदनी माह की पहली तारीख अपने यहाँ के ज़िम्मेदार को जमा करवाने का मामूल बना लीजिए। फैज़ान सुन्नत के दर्स, इनफरादी कोशिश, माह रमदान मुबारक में आशिकान रसूल के साथ एतिकाफ़ की भी बड़ी बरकतें हैं। आइए इस ज़िमन में एक मदनी बहार आपके गोश गुजार करूँ। भिम्बर कश्मीर के एक इस्लामी भाई फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। कॉलेज का आज़ादाना माहौल था, फिल्में ड्रामे देखने और गाने बाजे सुनने का शौक़ जुनून यानी पागलपन की हद तक था। हत्ता के उस गाड़ी में सफ़र नहीं करते थे जिसमें गाने या फिल्म ना होती। उनकी कॉलोनी में दावत इस्लामी के एक इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए। उन्होंने फैदान सुन्नत से दर्स दिया और एक दुआ याद करवाई। इससे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इसके बाद से दर से फैज़ान सुन्नत सुनना शुरू कर दिया। इनके दीनी माहौल से बाकायदा वाबस्तगी की एक बहुत बड़ी वजह उनके इलाके के एक मुबल्लिग का हुस्ने अखलाक, आला किरदार, जज्बाए हुस्ने अमल और मोहब्बत भरे अंदाज में इनफरादी कोशिश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने माह रमदान मुबारक में आशिकान रसूल के साथ 10 दिन के इतिकाफ़ की भी सआदत हासिल की। इसका इन पर बड़ा गहरा असर हुआ और वो गुनाहों से तायब हो गए। कश्मीर में दावत इस्लामी की एक मजलिस के निगरान बने और कश्मीर के एक डिवीज़न की निगरानी से भी मुशर्रफ हुए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने दर से फैज़ान सुन्नत की बरकत से दीनी माहौल की तरफ रगबत मिली। इस्लामी भाई की इनफरादी कोशिशों शफकत ने मज़ीद तकवीत बख्शी और सद करोड़ मरहबा मदनी माहौल के अंदर होने वाले सुन्नत भरे एतिकाफ़ रमदान ने गुनाहों की गहरी खाई में गिरे हुए इंसान को सहारा देकर निकाला और इतनी ज़बरदस्त अजमत बख्शी के दावत इस्लामी के बहुत सारे ज़िम्मेदारों का भी ज़िम्मेदार बना दिया। काश तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बशमूल सब के सब छोटे बड़े ज़िम्मेदारान रोज़ाना दो दर से फैदान सुन्नत देने या सुनने की तरकीब फरमा लिया करें। कब्र की रोशनी, आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब फैज़ान सुन्नत 1548 सफहात सफ़ा 195-196 पर है। दरसो बयान के सवाब का भी क्या कहना। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह शरहु सुदूर में नकल करते हैं, अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, भलाई की बातें खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। मैं भलाई सीखने और सिखाने वालों की कब्रों को रोशन फरमाऊंगा ताकि उनको किसी किस्म की वहशत ना हो। कब्रें जगमगा रही होंगी। इस रिवायत से नेकी की बात सीखने सिखाने का अजर व सवाब मालूम हुआ इंशा अल्लाह। सीखने सिखाने की नीयत से सुन्नतों भरा बयान करने या दर्स देने और सुनने वालों के तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे इंशा अल्लाह। उनकी कब्रें अंदर से जगमग जगमग कर रही होंगी और उन्हें किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं होगा। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इनफरादी कोशिश करते हुए नेकी की दावत देने वालों, मदनी काफ़िले में सफ़र और जायज़ा करके नेक आमाल का रिसाला रोज़ाना पुर करने की तरगीब दिलाने वालों और सुन्नत भरे इज्तवा की दावत पेश करने वालों, नीज बनीयत सवाब मुबल्लिगीन की नेकी की दावत को सुनने वालों की कबूर भी इंशाअल्लाह हुजूर मुफीजुन नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदके नूरुन अला नूर होंगी। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद तूबु इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दावत में गीबत की हिकायत। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि अलैह कहीं खाने की दावत पर तशरीफ ले गए। लोगों ने आपस में कहा कि फलां शख्स अभी तक नहीं आया। एक शख्स बोला, वो मोटा तो बड़ा सुस्त है। इस पर हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि अलैह अपने आप को मलामत करते हुए फरमाने लगे, अफसोस मेरे पेट की वजह से मुझ पर ये आफत आई है कि मैं एक ऐसी मजलिस यानी बैठक में पहुंच गया जहां एक मुसलमान की गीबत हो रही है। ये कहकर वहां से वापस तशरीफ ले गए और इस सदमे से 3 और बर रिवायत दीगर 7 दिन तक खाना ना खाया। गीबत करना गुनाह कबीरा है कि 19 हरूफ की निस्बत से किसी को सुस्त वगैरह कहने के मुताल्लिक 19 मिसालें। ए आशिकाने औलिया, देखा आपने अल्लाह पाक के नेक बंदे मुसलमानों की आबरू रेजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और ऐसी बैठकों और दावतों को भी तर कर देते हैं जहां मुसलमानों की गीबतों का सिलसिला हो। क्या कभी हम भी किसी गीबतों भरी दावत या बैठक से वॉकआउट यानी उठ खड़े हुए? हाँ, वहां से उठकर चल देने से पहले अपनी बात का वजन देखना होगा। यानी अगर ये जन्ने गालिब हो के समझाने से गीबत करने वाले तौबा कर लेंगे तब तो उन्हें गीबत से बाज रखना आप पर वाजिब हो जाएगा, और अगर ऐसी सूरत नहीं तो जिस तरह मुमकिन हो गीबत सुनने से बचिए, और अगर फितना और फसाद का खौफ ना हो तो वहाँ से उठकर चल दीजिए। चूँकि गीबत की जायज़ सूरतें भी मौजूद हैं लिहाजा समझाने और उठकर जाने वाले के पास इतना इल्म होना ज़रूरी है जिससे वो ये तय कर सके कि वाकई गुनाहों भरी गीबत हो रही है। इस शिकायत से मालूम हुआ कि पीठ पीछे किसी को मोटा और सुस्त कहना भी गीबत में दाखिल है। मोटा और सुस्त दोनों अलग अलग अल्फाज हैं। यानी अगर किसी भारी भरकम आदमी को पीछे से बिला इजाज़त शरई मोटा कहा तब भी गीबत है। इसी तरह बिला इजाज़त शरई पीछे से किसी को सुस्त, काहिल, नाकारा, ढीला, कामचोर, निकम्मा, निखट्टू, गवार, जाहिल, अनपढ़, कम अक्ल, अहमक, बेवकूफ़, नादान, पगला, बावला, पागल, देर से समझने वाला, मोटी अक्ल वाला वगैरह कहना भी गीबत है। मेरे सर ये इसियां का बार आह मौला, बढ़ा जाता है दम बदम या इलाही। जमी बोझ से मेरे फटती नहीं है, ये तेरा ही तो है करम या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद तूबु इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दोनों जहां की जिल्लत, میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 24 صفحہ 347 پر فرماتے ہیں، جو مظلوم کی داد رسی پر قادر ہو اور نہ کرے تو اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور یہ اس کی مدد پر قادر ہو اور نہ کرے، اللہ پاک اسے دنیا و آخرت میں پکڑے گا۔ مزید اسی جلد کے صفحہ 426-427 پر لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کی غیبت وغیرہ کے ذریعے بے عزتی کو دیکھ کر خاموش رہنا ایسے یعنی قیامت کی رسوائی کے عذاب کا باعث ہے۔ تو خود اسے یعنی کسی مسلمان کو غیبت وغیرہ کے ذریعے ذلیل کرنے کے درپے ہونا اور جس منصب اور مرتبے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے نزدیک عزت حاصل ہو، اس میں غیبتوں، الزام تراشیوں اور بدگمانیوں وغیرہ کے ذریعے رخنہ اندازی یعنی خلل ڈالنے کی کوشش کرنا کس قدر عذاب اور اللہ پاک کے غضب کا سبب ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی عزت کون چھین سکتا ہے؟ اے عاشقان اعلی حضرت، بیان کردہ روایات اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے فرمودات یعنی ارشادات سے وہ حضرات عبرت حاصل کریں جو بلا اجازت شرعی کسی سنی عالم، پیشوا، سربراہ، کسی تنظیمی ذمہ دار یا کسی بھی عام مسلمان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اس کی عزت اچھالنے لگتے ہیں۔ یوں غیبتوں، چغلیوں، تہمتوں، بدگمانیوں، عیب دریوں، دل آزاریوں اور نہ جانے کن کن گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، جس کو اللہ پاک نے معزز کیا ہو اس کی عزت کون چھین سکتا ہے؟ سنو سنو، جو بد نصیب بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کی مخالفت کرتے، ان کو بدنام کرتے پھرتے ہیں، ایسوں کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ چنانچہ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 19 میں اللہ پاک کا فرمان عبرت نشان ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ مجھے غیبتوں سے تو محفوظ فرما، پئے سرور دو جہاں یا الہی، جو شاہ مدینہ کی نعتیں سنائے، عطا کر دے ایسی زبان یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا، غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے، سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجئے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے نیک اعمال کے مطابق عمل کر کے روزانہ جائزے کے ذریعے رسالہ پر کیجئے اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ آئیے مسجد بھرو اجتماع کی ایک انوکھی مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ 10 ستمبر 2004 بروز جمعت المبارک تحصیل ٹھری میروا سے متصل گوٹ حاجی الیاس خاص خیلی پاکستان کی جیلانی مسجد میں بعد نماز عشاء مسجد بھرو اجتماع ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماع ستمبر 2004 میں شرکت और हाथों हाथ मदनी काफिले में सफर की भरपूर तरगीब दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह 7 इस्लामी भाई 12 दिन के मदनी काफिले के लिए हाथों हाथ तैयार हो गए। उसी रात उसी गांव के खुशनसीब इस्लामी भाई जो कि दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सोए थे, उनको सरकारी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़्यारत हुई। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम इरशाद फरमाने के बाद खुद ही अपना तारुफ भी करवाया कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, और जो कुछ इरशाद फरमाया उसमें ये भी था, तुम्हारे गांव पर खुसूसी करम हो गया है। मजीद इरशाद फरमाया, जो चेहरे पर दाढ़ी सजाए उसकी मुझसे मोहब्बत है, और जो दाढ़ी मुंडाए उसकी मुझसे मोहब्बत नहीं, और तू रोज़ तहज्जुद की नीयत करता है मगर सुस्ती कर जाता है, उठ और तहज्जुद अदा कर। जब भरे मजमे में उस इस्लामी भाई ने कसम खाकर अपना ख्वाब सुनाया तो सुनकर कई इस्लामी भाइयों ने चेहरे पर दाढ़ी सजाने और मदनी काफिले में सफर पर जाने की नीयतें की। गोठ में, गांव में, धूप में, छांव में सबसे कहते रहे काफिले में चलो, जंगलों कोह में, कोह की खो में दीन के डंके बजे काफिले में चलो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मस्जिद भरो इज्तिमा मरहबा, ए आशिकान रसूल सुभान अल्लाह, मस्जिद भरो इज्तिमा की बरकतों की भी क्या बात है। बाज़ औक़ात सियासी तौर पर जेल भरो तहरीक चलाई जाती है, दावत इस्लामी चूँकि सुन्नत भरी आशिकान रसूल की दीनी तहरीक है, ये मस्जिद भरो के अज़ाइम रखती है, ये मस्जिद भरो के अज़ाइम रखती है और चाहती है कि बस किसी तरह भी उम्मत का बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए। इस मदनी बहार का अहम हिस्सा ख्वाब में महबूब रब्बुल इज़्ज़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत और ये पैगाम रिसालत है, जो चेहरे पर दाढ़ी सजाए उसकी मुझसे मोहब्बत है, और जो दाढ़ी मुंडाए उसकी मुझसे मोहब्बत नहीं। ख्वाब की इस बात की तायीद इस हदीस पाक से होती है जिसमें ये फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मेरी सुन्नत इख्तियार करे वो मेरा, और जो मेरी सुन्नत से मुंह फेर ले वो मेरा नहीं। दाढ़ी के मुतालिक एक इबरतनाक ख्वाब। मैं सगे मदीना उफियान दावत इस्लामी के मदनी काफिले के हमरा मुख्तलिफ शहरों का सफर करता हुआ हिंद के सूबा गुजरात के एक साहिली शहर वेरावल हाजिर हुआ। वहां एक क्लीन शेव नौजवान से मुलाकात हुई जिसने मुझसे कुछ इस तरह ख्वाब बयान किया। मैंने देखा सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के जानों पर सरे अनवर रख कर लेटे हुए हैं। करीब ही दाऊद इस्लामी का एक मुबल्लिग हाजिर है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुबल्लिग दावत इस्लामी से फरमाने लगे, अल्फाज याद नहीं, मजमून कुछ इस तरह था, मेरे उम्मती दाढ़ी मुंडवाते हैं, इससे मेरे सीने में दर्द होता है। ये सुनकर उस मुबल्लिग ने मुझ क्लीन शेव के चेहरे पर अपने दोनों हाथ फेर दिए और मेरी आंख खुल गई। गालिबन वो ख्वाब ताज़ा तरीन था। उस नौजवान ने मेरे सामने दाढ़ी बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी सजा लीजिए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसने अभी तक दाढ़ी नहीं रखी उसको चाहिए कि अपने प्यारे प्यारे मदनी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी दाढ़ी शरीफ अपने चेहरे पर सजा ले। अब तक मुंडाई या ठोड़ी के नीचे एक मुट्ठी से घटाई, इससे तौबा भी कर ले। शैतान लाख रोके। दाढ़ी के मुतालिक दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना का दिल हिला देने वाला रिसाला काले बिच्छू सफहा 25 का मुताला कीजिए। नीज मकतबतुल मदीना की जारी करदा काले बिच्छू सफहा 25 नामी ऑडियो कैसेट सुनिए या VCD देखिए। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है, क्यों इश्क का चेहरे से اظہار نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکر اور دھوکہ بازی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن کو ضرر یعنی نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔